नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। सबसे पहले मुख्य समाचार। बिहार विधान परिषद की रिक्त हुई 9 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव के लिए आज होगी अधिसूचना जारी। 18 जून को होगा मतदान। देश भर में उर्वरकों को संतुलित और उचित बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान आज से हो रहा है शुरू। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने 30 आवश्यक दवाओं का मूल्य निर्धारित किया, इनमें मधुमेह और हृदय रोग सहित कई दवाएं शामिल। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान गोपालगंज, सारण, सिवान और पश्चिम चंपारण सहित राज्य के उत्तर पूर्वी भागों के कुछ जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। बिहार विधान परिषद की रिक्त हुई 9 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी होगी। निर्वाचन आयोग के अनुसार 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं, जबकि 11 जून नामांकन वापसी की अंतिम तारीख है। इन सीटों पर चुनाव 18 जून को कराया जाएगा। इसी दिन शाम को मतगणना की जाएगी। गौरतलब है कि डॉ कुमुद वर्मा, प्रोफेसर गुलाम गौस, सुनील कुमार सिंह समेत 9 पार्षदों का कार्यकाल 28 जून को पूरा हो रहा है। इधर आयोग ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे से रिक्त हुई विधान परिषद की एक सीट के लिए उपचुनाव भी 18 जून को कराए जाने की घोषणा की है। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि आगामी विधान परिषद चुनाव में एनडीए सभी 10 सीटों पर विजय हासिल करेगा।
उम्मीदवार को लेकर जो है शीर्ष नेतृत्व में चर्चा हो रही है, उम्मीदवार तय मंथन किया जा रहा है, जल्द ही हम लोग सार्वजनिक करेंगे। जिस तरह हम लोगों ने 5 सीट राज्यसभा का चुनाव जीते थे, उसी तरह 10 सीट जो है विधान परिषद का चुनाव जीतेंगे।
केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से कृषि बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। उर्वरकों को संतुलित और उचित बढ़ावा देने के लिए एक महीने का ये अभियान 30 जून तक चलेगा। एक रिपोर्ट।
यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए दिशा में एक बड़ी पहल है। इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि सभी मिलकर भाग लेंगे। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोयल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। साथ ही नकली खाद, बीज और कीटनाशकों की पहचान करने के बारे में भी किसानों को सजग किया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी।
इधर पूरे प्रदेश में भी आज से खेत बचाओ अभियान की शुरुआत हो रही है। इस दौरान किसानों को कम खाद और हरित खाद के उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। वंचित किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड और प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का लाभ दिलाया जाएगा। अभियान की शुरुआत पटना स्थित कृषि भवन से कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा करेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने श्रावणी मेले के दौरान कांवरिया पथ पर सुरक्षा और सुविधा का व्यापक इंतजाम सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री भागलपुर समाहरणालय के सभागार में श्रावणी मेले की तैयारी और अन्य योजना की समीक्षा बैठक में कहा कि श्रद्धालुओं को बेहतर व्यवस्था और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वहीं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भागलपुर में 203 करोड़ रुपए की लागत वाली 84 विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री ने विक्रमशिला पुल और गंगा पथ परियोजना का निरीक्षण कर विकास कार्यों के प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही विक्रमशिला सेतु पर आवागमन शुरू कर दिया जाएगा।
सितंबर को मैं स्वयं आऊंगा और स्कूल को फिर से चालू करूंगा। अभी टेम्पररी चालू हो और दूसरा, जब तक ये पुल चालू नहीं हो तो प्राइवेट गाड़ी हो या आम लोग हो, उसको मुफ्त में इस तरफ से इस तरफ ले जाने की सारी व्यवस्था सरकार की।
राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण NPPA ने आम लोगों को राहत देते हुए 30 आवश्यक दवाओं की खुदरा कीमतें निर्धारित कर दी हैं। इन दवाओं में विटामिन D3, कैल्शियम, मधुमेह और हृदय रोग के उपचार में इस्तेमाल होने वाली दवाओं के साथ साथ अंग प्रत्यारोपण के बाद दी जाने वाली महत्वपूर्ण दवाएं भी शामिल हैं। प्राधिकरण द्वारा जारी आदेश के अनुसार निर्धारित कीमतों में वस्तु और सेवा कर यानी GST शामिल नहीं है। NPPA ने स्पष्ट किया है कि दवाओं की कीमत में GST तभी जोड़ा जा सकता है जब संबंधित कर का भुगतान सरकार को किया जा चुका हो या उसका भुगतान देय हो। सरकार का कहना है कि आवश्यक दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से मरीजों को उचित दर पर दवाएं उपलब्ध कराना और स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक किफायती बनाना है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने सेवानिवृत्ति की निकटता वाले 275 पुलिस कर्मियों का ऐच्छिक तबादला किया है। इन पुलिस कर्मियों में 5 इंस्पेक्टर, 176 एसआई, 42 एएसआई, 54 हवलदार और 6 सिपाही शामिल हैं। पुलिस उप महानिरीक्षक कार्मिक के अनुसार सेवानिवृत्ति में 2 साल से कम अवधि वाले कर्मियों को गृह जिला और ऐच्छिक स्थानांतरण संबंधी आवेदनों पर विचार किया गया है। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने बक्सर में महाराणा प्रताप जयंती पर समारोह का उद्घाटन किया। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए श्री सिंह ने युवाओं से महाराणा प्रताप के जीवन से सीख लेने की अपील की। इस अवसर पर विधि मंत्री संजय सिंह टाइगर और खेल मंत्री श्रेयसी सिंह, विधायक आनंद मिश्रा, संतोष निराला और राहुल सिंह सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना पर जा सकते हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सारण, सिवान, पूर्वी और पश्चिम चंपारण जिले सहित उत्तर पूर्वी भागों के कुछ जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है।
दिनांक 1 जून उत्तर पूर्व भाग के जिलों के एक या दो स्थानों में तेज हवा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा और मेघ गर्जन वज्रपात की संभावना है। अगले 3 दिनों के दौरान राज्य के अनेक भागों के अधिकतम तापमान में 4 से 8 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान राज्य के अनेक भागों के न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है।
इधर राज्य के कुछ हिस्सों में मौसम शुष्क बना हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान 37.1 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ कैमूर का भभुआ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की एक टीम तैनात की है। बोर्ड ने कहा है कि वो अपनी सेवा प्रदाता के ऑनमार्क पोर्टल में पाई गई खामियों पर कड़ी निगरानी रख रहा है, जिन्हें हाल ही में सार्वजनिक रूप से उजागर किया गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने बताया कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का एक दल पिछले कुछ दिनों से इन प्रणालियों को मजबूत करने और पोर्टल को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए काम कर रहा है। बोर्ड ने बताया कि पहचानी गई खामियों को दूर कर लिया गया है। आईआईटी रुड़की ने जेईई एडवांस 2026 का परिणाम घोषित कर दिया है। इस परीक्षा में गया जी के शुभम कुमार ने 360 में से 330 अंक प्राप्त कर कॉमन रैंक लिस्ट में पहला स्थान प्राप्त किया है। शुभम गया जी के नारदगंज ब्रह्मनी घाट के निवासी हैं। उन्होंने जेईई मेंस के दोनों सत्रों में 100% प्राप्त किए थे। इस परीक्षा में 56,880 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। दूसरे स्थान पर आईआईटी दिल्ली जोन के कबीर छिल्लर हैं, वहीं जतिन चाहर 319 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर हैं। औरंगाबाद जिला परिषद की सदस्य नीतू सिंह को 3 जून को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार वितरण समारोह में सम्मानित किया जाएगा। ये सम्मान उन्हें अपने क्षेत्र में किए गए प्रभावी कार्यों और ग्रामीण विकास में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आगामी 5 जून को पटना चिड़ियाघर द्वारा बच्चों के लिए चित्रकला और पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता का उद्देश्य बच्चों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। चिड़ियाघर प्रशासन के अनुसार बच्चे अपने घर से ही प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। प्रतिभागियों को पर्यावरण विषय पर चित्र या पोस्टर बनाकर ऑनलाइन पोर्टल patnazoodigital@gmail.com पर अपलोड करना होगा। प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक छात्र निर्धारित तिथि तक अपने चित्र और पोस्टर ऑनलाइन माध्यम से भेज सकते हैं। पटना चिड़ियाघर ने अधिक से अधिक बच्चों से इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की अपील की है, ताकि पर्यावरण संरक्षण का संदेश व्यापक स्तर तक पहुंच सके। पश्चिम चंपारण जिले के बगहा पुलिस ने रामनगर थाना क्षेत्र के 3 दुकानों से भारी मात्रा में लॉटरी और कैश के साथ 3 कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। भोजपुर जिले के सहार थाना क्षेत्र में सोन नदी में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि नदी में अवैध बालू उठाव के कारण बने गहरे गड्ढे में डूबने से यह हादसा हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इधर पटना के दीदारगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत पूर्वी दीदारगंज घाट पर गंगा नदी में नहाने के दौरान डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई। दिल्ली के साकेत के सेदुला जवाब इलाके में 5 मंजिला इमारत गिरने से बिहार के 2 अभियंताओं की मौत हो गई। इनमें एक अभियंता नवादा के और दूसरा मुजफ्फरपुर के रहने वाले थे। हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रोहतास के पीयूष राज ने रिले रेस में कांस्य पदक प्राप्त किया है। ये उपलब्धि हासिल करने वाले बिहार के पहले एथलीट बने हैं। भारतीय पुरुष टीम में पीयूष राज के साथ सैयद कबीर, रंजीत कुमार एस, मोहम्मद अशफाक मौजूद थे। इन्हें सभी ने 4x400 मीटर रिले टीम में शानदार प्रदर्शन करते हुए ये उपलब्धि हासिल की। कटिहार में आयोजित बिहार राज्य अंडर 13 शतरंज प्रतियोगिता में सारण की मोहिनी पंडित और पटना की देवांश केसरी चैंपियन हुए। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार चैंपियन बना है। गुजरात टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 155 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने 18 ओवर में लक्ष्य को प्राप्त किया। इधर राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को आईपीएल क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चयन किया गया। उन्होंने सबसे अधिक 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीता है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान का शीर्षक है, मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के जरदालू आम और सत्तू की प्रशंसा की। अखबार लिखता है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को आज भेजा जाएगा जरदालू आम। दैनिक जागरण की सुर्खी है, सीबीएसई ने स्वीकारी ऑनलाइन मूल्यांकन पोर्टल में सुरक्षा खामी। दैनिक भास्कर की विशेष खबर है, बिहार की पहली एरो सिटी होगा हरिहरनाथपुर, 11 टाउनशिप में 5 लाख रोजगार मिलेगा। प्रभात खबर ने टेंडर घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तार ठेकेदार ऋषुश्री से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, बढ़े बिलों से फिक्स होता था 10% कमीशन। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार विधान परिषद की रिक्त हुई 9 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव के लिए आज होगी अधिसूचना जारी, 18 जून को होगा मतदान। देश भर में उर्वरकों को संतुलित और उचित बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का खेत बचाओ अभियान आज से हो रहा है शुरू। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने 30 आवश्यक दवाओं का मूल्य निर्धारित किया, इनमें मधुमेह और हृदय रोग सहित कई दवाएं शामिल। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान गोपालगंज, सारण, सिवान और पश्चिम चंपारण सहित राज्य के उत्तर पूर्वी भागों के कुछ जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।